हरिओ पूज्य महाराज जी के पुण्य श्री चरणों में आप सबकी तरफ से वंदन करते हुए महाराज जी आपका प्रेमपुरी में बहुत ही सद्भाव से प्रेम से स्वागत है। महाराज जी का परिचय देते पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि पूज्य महाराज जी हमारे जो श्रद्धेय संत काशिकानंद जी महाराज है उनके वहां 12 साल से महाराज जी स्वाध्याय का प्रवचन करा रहे हैं और बड़ी हम खुशी होती है कि ऐसे संत हमारे बीच में हमें प्राप्त हुए। हमारे प्रेमपुरी के अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी श्री विश्वेश्वरानंद जी महाराज के सूचना से और उनके आशीर्वाद से यह संत हमें प्राप्त हुए हैं, उनको भी हम वंदन करते हैं। पूज्य महाराज जी ओमकारेश्वर जो है वहां पे जो आश्रम है और उनके जो गुरु है उनके साथ उन्होंने रामनाथ जी बताया नाम महाराज जी स्वामी रामानंद
सरस्वती
स्वामी रामानंद सरस्वती जी से हाँ फिर भी महाराज जी ज्यादा परिचय उनके गुरु जी का भी देंगे। तो ऐसे संत और ऐसी भूमि पर उन्होंने तपस्या भी की है प्रवचन भी सुना है और ऐसे गुरु से सुना है कि जो एक प्रसादी रूप हमें प्राप्त होगा और जो काशिकानंद जी महाराज के वहां इतने सालों तक जिन्होंने तप किया है स्वाध्याय के माध्यम से सुनना और पूज्य महाराज जी के साथ रहना तो ऐसे आदर्श और ऐसे परम संत हमारे बीच में है ब्रह्मचारी स्वामी श्री को हम वंदन करते हैं। यह मास ऐसे भी अगस्त मास है श्रावण मास है बाबुलनाथ की टेकरी सामने ही दर्शन हमें दे रही है और ऐसे संत का आगमन कुछ अच्छा ही सूचित कर रहा है और उसी बाबुलनाथ टेकरी वाले को हम प्रणाम करते हुए भगवान शिव को प्रणाम करते हुए आप सब की तरफ से पूज्य महाराज जी को वंदन करते हुए जो पंचदशी प्रवचन है तृप्ति दीप प्रकरण उस पर पूज्य महाराज जी प्रकाश डालेंगे। हरिओम
सच्चिदानंद रूपाय विषभूतपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः अखण्डानन्दरूपाय शिवाय गुरवे नमः शिष्याज्ञानतमोध्वंस पट्वर्केन्द्वग्निमूर्तये वेदार्थस्य प्रकाशेन तमोहार्दं निवारयन् पुमार्थश्चतुरो देयात् विद्यातीर्थमहेश्वरः नत्वा श्रीभारतीतीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की कृपा से हम आप सभी लोग स्वाध्याय श्रवण कर रहे हैं। स्वाध्याय का आप लोग हम भी लोग श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहे हैं। इसका मूल कारण हमारे महापुरुष आपके लिए जैसे हमारे लिए हमारी परंपरा में जो आए हुए गुरुवर्य लोग हैं इसी प्रकार आपके लिए भी अपने गुरु कौन जिनके द्वारा ये शुरुआत हुई है जैसे कि स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी है स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज जी है इन महापुरुषों की कृपा से क्या है ये सब हमें मिल रहा है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी को और प्रेमपुरी महाराज जी को तो मैंने देखा नहीं है, परंतु स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज, इनकी शिष्य स्वामी गणेशानंद जी महाराज, इनका मुझे जब हम घर से भाग गए थे तो सीधा उनके पास हम पहुंचे थे, तो उनके सानिध्य में रहे। उसके बाद फिर ओंकारेश्वर में मार्कंडेय संन्यास आश्रम के संस्थापक स्वामी रामानंद सरस्वती, उनके द्वारा अनुग्रहित होकर के हमने उनकी कृपा से काशी में साधना सदन के स्वामी विश्वात्मानंद पुरी जी महाराज, इसी प्रकार से यहाँ पर पिछले मेरे ख्याल से गर्मी में क्या पिछले बरसात में आए हुए थे स्वामी दिव्य चेतन जी महाराज, वर्तमान में जेपी नगर में स्वाध्याय प्रवचन कर रहा है, उनका भी अनुग्रह मेरे ऊपर रहा। स्वामी रमणानंद जी आपने सुने होंगे क्या नहीं पता नहीं, देखे क्या नहीं, स्वामी विरागानंद जी, ऐसे जैसे आप लोग अनेक महात्माओं से स्वाध्याय प्रवचन श्रवण करके ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, इसी प्रकार हमने भी ऐसे ही किया। हाँ इतना है, किसी का थोड़ा सा अधिक होता है, किसी का कम होता है, वो अपनी अपनी जिज्ञासा, अपनी अपनी लगन, इसके ऊपर होता है। और अदृश्य रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा, स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज, उन्हीं की कृपा होगी, आपने कभी उनके फोटो में, हाँ वो हम देखे, मैं उनको उनके विषय में बताता हूँ, मेरे ख्याल से वो फोटो यहाँ नहीं है, वो उस जो जेपी नगर में प्रेमपुरी सत्संग मंडल है वहां पर वो फोटो है। अब उनकी कृपा होगी या और किसकी कृपा होगी ये तो मैं नहीं जानता, परंतु उनकी गले की माला जो गौरी शंकर का कंठा, वो परंपरा से उनकी माला, उनकी छिपी छिपी समझते हैं ना, कमंडल लकड़ी का जो फल का, वो हमारे पास आया है और उन्हीं की माला पहन करके पूजा पाठ इत्यादि करते रहते हैं। तो परंपरा से साधना सदन से क्या है समझ लीजिए कि इन्हीं की परंपरा में हम आए हैं, इसलिए उनकी परंपरा का प्रभाव मेरे ऊपर है। वो जैसे करना चाहते हैं, वो जैसे चलते हैं, उसके अनुसार चलने का मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करता रहता हूं। उनके जैसा तो हो नहीं सकता, परंतु प्रयास उनके जैसा होने का हम प्रयास करते रहते हैं, बस उनकी कृपा हो तो उन्हीं के जैसे हम हो जाएंगे, और महापुरुषों की कृपा तो रहती है। और स्वामी अखंडानंद जी महाराज उनकी किताब भी हम पढ़ते हैं, तो ये समझ लीजिए हम जिन महापुरुषों की किताबें पढ़ते हैं, जिनकी किताब हमें पढ़ने के लिए मिली है, समझ लीजिए उस महापुरुष का हमारे ऊपर अनुग्रह है, ये इतना ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए हम आप लोग अभी पंचदशी का क्या एक महीना भर एक मास तक हम क्या है श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे, तो जिस महापुरुष का ग्रंथ है अर्थात विद्यारण्य मुनि और भारती तीर्थ, और उन पर टीका लिखने वाले श्री रामकृष्ण, इनका जो चिंतन, ये तो महापुरुषों का जो उस आत्मा विषय में, ब्रह्म विषय में, जगत के विषय में, ईश्वर के विषय में जो चिंतन किया है, उस चिंतन को हमें कैसे समझ में आएगा, इसको प्रक्रिया के द्वारा वो बता रहे हैं। उस प्रक्रिया में तीन बातें होती है, श्रुति अर्थात प्रमाण, श्रुति प्रमाण, श्रुति के अनुकूल पुराण स्मृति इत्यादियों का प्रमाण लेकर के, युक्ति प्रमाण लेकर के अर्थात युक्तियों को लेकर के, और एक हम आप लोगों का अनुभव लेकर के क्या है उस आत्मा के विषय में, उस जगत के विषय में, उस ईश्वर के विषय में, शरीर के विषय में, ये सभी के विषय में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। और हमें समझने के लिए तीन ही चीज है, श्रुति अनुभव और युक्ति। ये तीनों के द्वारा हम समझे तो ठीक है, और यदि नहीं समझे तो फिर हमारे लिए उपाय नहीं है। इसलिए यहां पर तीनों चीजों का क्या है, प्रक्रियाओं के द्वारा समझा रहे हैं, और विशेष करके ये पंचदशी ग्रंथ प्रक्रिया ग्रंथ है। इसलिए इस ग्रंथ में आप तो रोज ही श्रवण करते आ रहे हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। प्रक्रिया ग्रंथ में अन्य किसी की कथा नहीं होती है, यह तो मात्र आत्मकथा है, अर्थात अपने ही विषय में चर्चा। यहां पर मैं कौन हूं इसको प्रक्रिया के द्वारा समझना है। यहां पर प्रभु रामचंद्र ने क्या किया, वो कैसे जन्मे थे, कहां जन्मे थे, उन्होंने कहां विद्या अर्जन किया, कहां शस्त्र विद्या अर्जन किया, ये सब चीजें यहां पर नहीं है। वो कैसे क्या है यहां से यह लोक से निकल गए, इसी तरह और भी कथा है, उन कथाओं का यहां कोई वर्णन नहीं है, और उन कथाओं की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आत्मा को समझना है इसलिए आत्मा की ही कथा करनी है, अर्थात आत्मचिंतन करना है। उस आत्मचिंतन के लिए तीन प्रक्रियाओं के द्वारा या अभी तक जो 15 प्रकरणात्मक जो ग्रंथ है वो मात्र प्रक्रिया ही बताई जा रही है, और उन प्रक्रियाओं को बताते हुए क्या है हम उस आत्मा को क्या है श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा क्या साधने का प्रयत्न हमें करना है। तो हम लोग जो है शुरुआत करते हैं, कितने श्लोक तक हम लोगों ने आप लोगों ने कल तक किया था, 213 तक। कोई बात नहीं, चलिए आप 13 तक कह रहे, मैं 10 के आगे से ले लेता हूं, क्योंकि प्रसंग जो है चला आ रहा है उसके द्वारा। तो यहां पर 10वें श्लोक में ये बताया था, विविंचता भोक्तृतत्व जाग्रदादिश्वसंगता अन्वय वितरेकाभ्याम साक्षिण्यध्य वसीयते। इस श्लोक में ये बताया है जो अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा जो भोक्तृतत्व अर्थात परमार्थ स्वरूप जिसका जो कुठस्थ पारमार्थिक जो स्वरूप है, किसका जो भोक्ता, भोक्ता मतलब कुठस्थ लेना है, वो जो भोक्ता पारमार्थिक उसको अन्वय और व्यतिरिक के द्वारा क्या है निश्चय करना है, ये बताया इस श्लोक में। तो अब उसका उच्चारण कर लीजिए, विविंचता भोक्तृतत्वम्, विविंचता भोक्तृतत्वम् जाग्रदादिश्वसंगता, जाग्रदादिश्वसंगता अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम साक्षिण्यध्य वसीयते, साक्षिण्यध्यवसीयते। कहते हैं विविच्छता विमिंचताम, अर्थात जो भोक्ता भोक्त्री तत्व अर्थात जो कुठस्थ आत्मा ब्रह्म जिसको कहते हैं, ऐसे कुठस्थ को क्या है जागृत आदियों में असंग रूप से क्या है निश्चय करना है, अथवा ये निश्चय है कि जो कुठस्थ आत्मा तत्व भोक्त्री वो कैसा है जागृत आदियों में अन्वित है, किंतु जागृत आदि सब जगह अन्वित नहीं है, अर्थात जागृत स्वप्न सुषुप्ति जागृत अवस्था स्वप्न में नहीं है, स्वप्न अवस्था जागृत में नहीं है, इसी तरह जागृत निद्रा में नहीं है, निद्रा जागृत में नहीं है, अथवा ये कहिए जागृत में जो स्थूल शरीर उस शरीर वो शरीर स्वप्न में नहीं है, मतलब स्वप्न में उसका अन्वय नहीं हो रहा है। इसी प्रकार स्वप्न में जो स्वप्नस्थ शरीर है वो जागृत में उसका अन्वय नहीं है, इसी प्रकार जागृत और स्वप्न में जो शरीर है उसका अन्वय सुषुप्ति में नहीं है, किंतु जो कुठस्थ भोक्तृतत्व उसका अन्वय इन तीनों के साथ है। अन्वय का मतलब क्या है, इन तीनों अवस्थाओं में उसकी उपस्थिति, अन्वय अर्थात युक्त, तीनों अवस्थाओं में युक्त उन अवस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ है। कौन? वो भोक्तृतत्व आत्मा, वो पारमार्थिक है, ऐसा जो पारमार्थिक भोक्तृतत्व आत्मा जागृत के साथ भी उसका अन्वय हो रहा है, सुषुप्ति के साथ भी अन्वय हो रहा है और स्वप्न के साथ भी उसका अन्वय हो रहा है, किंतु इन तीनों अवस्थाओं में जो तीन शरीर जागृत वाला जो स्थूल शरीर जिसको विश्व कहते हैं और स्वप्नावस्था में जो तेजस और निद्रावस्था में प्राज्ञ, इन तीनों का तीनों अवस्थाओं के साथ अन्वय नहीं है, मतलब उनकी उपस्थिति नहीं है किंतु आत्मा की उपस्थिति है। ये इस अन्वय और व्यतिरिक के द्वारा क्या है निश्चय करना है, और वो आत्मा का अर्थात कुठस्थ का जो अन्वय हो रहा है किसका, उस आत्मा का कुठस्थ का वो कैसा है वो साक्षी है ऐसा निश्चय करना है, ये निश्चय है शास्त्रों को महापुरुषों को। अब हमें क्या करना है, उसका निश्चय करना है कि ये तीनों अवस्थाओं में जिसका अन्वय हो रहा है वो क्या है साक्षी है, ऐसा हमें निर्णय करना है निश्चय करना है। उसके विषय में बताएंगे उसका निश्चय करने से क्या होगा, भाष्य देख लीजिए उसका टीका। विविंचति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम भोक्तृतत्वम् अर्थात भोक्तुः पारमार्थिक स्वरूपम्, अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा भोक्तृतत्व, भोक्तृतत्व का अर्थ करता है भोक्तुः पारमार्थिक स्वरूपम्, उस भोक्ता का जो पारमार्थिक स्वरूप विविंचता अर्थात उसको क्या करना है अलग करना है, विवेचन करते हुए कैसे किससे विवेचन अलग अलग करना है, तो भोग्येभ्यो जड़ जातेभ्यो, भोग्य जो जड़ पदार्थ, भोग्य कौन है शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर है ना लिंग शरीर अथवा अन्य पदार्थ, ये शरीर से अन्य कोई पदार्थ है, इन सभी को लेना अर्थात आत्मा को छोड़ करके बाकी सब के सब क्या है भोग्य है, और वो भोग्य सब क्या होते हैं जड़ होते हैं। ऐसी जड़ जात, जात शब्द का अर्थ क्या, समूह, जड़ों का जो समूह भेदेन जानता अर्थात उस कौन पारमार्थिक जो भोक्ता आत्म तत्व जीव, उससे क्या है जड़ जात अलग है। कैसे अलग है, कहते हैं पुरुषेन जागृत आदिशु, उन जागृत आदियों में वो जागृत आदिशु का अर्थ करता है जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु अवस्थासु, अर्थात जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, इन अवस्थाओं में साक्षिणी असंगता अध्यवसीयते, ये निश्चय होता है इन अवस्थाओं में, किन अवस्थाओं में, इन तीन अवस्थाओं में साक्षी का क्या है निश्चय होता है। वो कैसा है साक्षी, असंग, साक्षी अर्थात देखने वाला दृष्टा, जो तीनों अवस्थाओं को देखता है, जानता है, प्रकाशित करता है, ऐसा जो साक्षी वो कैसा है, असंग है। ऐसा क्या है निश्चय करना चाहिए, शास्त्र का निश्चय है, महापुरुषों का निश्चय है, परंतु हमें क्या है इसका निश्चय करना चाहिए कि वो साक्षी कैसा है, असंग है, अर्थात उनके साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो आप कहेंगे कि जैसे जागृत में जो है भोजन किया, तो जागृत अवस्था में जो अब हम जो है जागृत अवस्था के साथ हमारा जो अन्वय हो रहा है, तो भोजन करने के बाद संग है या नहीं, ऐसा लगता तो है संग, हम कहते हैं हाँ मैं तृप्ति का अनुभव कर रहा हूं, सुख दुख का अनुभव कर रहा हूं, इसका मतलब क्या संग है, क्या संग नहीं है, ये अनुभव कर रहा हूं का मतलब क्या, मैं उसको देख रहा हूं, जो उधर तृप्ति हुई उसका मैंने अनुभव किया, प्रकाशन किया, प्रकाशन करना संग नहीं होता है, संयोग करना संग होता है, तादात्म्य करना संग होता है। तो जो हमें कह रहे कि मुझे मेरा पेट भर गया, अब ये जो बोल रहा है व्यक्ति क्या समझ करके कर रहा है, अर्थात ये क्यों कह रहा है, क्योंकि जागृत अवस्था में जो शरीर है उस शरीर के साथ तादात्म्य करता है, तब वो क्या करता है, वो मैंने भोजन किया मेरी तृप्ति हो गई ऐसा बोलता है। तादात्म्य करेंगे तो उस तरह की हमें क्या है प्रतीति होगी, तादात्म्य नहीं करते हैं तो हमें ये मालूम होगा कि नहीं मैं एक साक्षी हूं, जो उधर तृप्ति हुई है मैं इसको देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। अथवा ये कहिए असंग कैसे हो गया, क्योंकि जागृत में जो अनुभव किया था उसको छोड़ करके फिर स्वप्न में चला गया, उसको भी देख लिया उसने, स्वप्न छोड़ करके फिर निद्रा में चला गया, तो स्वप्नों को देख करके निद्रा को भी देख रहा, फिर निद्रा से फिर जागृत में आ गया। यदि संग किया होता तो वहां से उधर जाना नहीं चाहिए, जो जिसका संग करता है, जिसका संबंध करता है, वो उसको छोड़ नहीं पाता, किंतु आत्मा तो सबको छोड़ करके जा रहा है ना। अच्छा, उसको छोड़ने में कोई तकलीफ, जागृत से स्वप्न जाने में, स्वप्न से निद्रा में जाने में कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ नहीं है, क्यों कि उसकी उसका क्योंकि उसके साथ उसका संग है ही नहीं, अर्थात संबंध है ही नहीं। किंतु जहां संबंध होता है, संबंध तोड़ने के लिए कष्ट है, संबंध यदि है तो उस संबंध को तोड़ने के लिए प्रयास होता है, जहां संबंध होता है ना वहां पर प्रयास करना पड़ता है संबंध तोड़ने के लिए। जैसे मान लीजिए अभी हाथ में मेहंदी लगाई। अब मेहंदी लगाई तो उस मेहंदी का इस चमड़ी के साथ क्या हो गया, संग हो गया। अब इन मेहंदी का और इस चमड़ी से इसको अलग करना है तो प्रयास करना पड़ेगा ना, आपको कोई रंग लग गया। संबंध होने से संबंध को तोड़ने के लिए प्रयास करना पड़ता है, किंतु जागृत से स्वप्न में जाने, जागृत से स्वप्न में जाने में और स्वप्न से निद्रा में जाने में कोई प्रयास है क्या? नहीं, ये सहज अवस्था। इसका अर्थ क्या है, जो संग नहीं करता है वही क्या है, सहज रीत्या जा सकता है, और जो संग करेगा वो सहज नहीं जा सकता। जो जिसमें तादात्म्य करेगा वो तादात्म्य करने वाला क्या है, वो सहज छोड़ नहीं सकता, और जिसका वास्तविक संग नहीं है वो सहज जा सकता है। असंग है ये कैसे समझेंगे, वो सहज रूप से क्या है, जागृत से स्वप्न में जाता है, स्वप्न से सुषुप्ति में जाता है, सुषुप्ति से फिर जागृत में जाता है। उन अवस्थाओं का कोई इस पर कोई प्रभाव नहीं है, वो मात्र क्या करता रहता है, देखता रहता है। जागृत अवस्था में क्या हुआ उसको देखता है, स्वप्न अवस्था में क्या हुआ उसको देखता रहता है, और सुषुप्ति अवस्थाओं में जो हुआ है उसको वो देखता रहता है। इसलिए क्या है, वो असंग है। जो साक्षी कैसा असंग है, ऐसा जो निश्चय करता है, अथवा हमें निश्चय करना चाहिए, करने से क्या होगा, और जो असंग रूप में जो निश्चय करता है उसका परिणाम क्या होगा उसको बताएंगे। इसी बात को कहते हैं अनवय व्यतिरेकौ दर्शयति। अब उस अनवय व्यतिरेक को दिखा रहे हैं उदाहरण दे करके। स्वाध्याय में आप ऐसे ही चलाते हैं ना, क्योंकि हम लोगों का स्वाध्याय बाहर का कुछ बोलना, जो पंक्ति पंक्ति भाई पंक्ति चलना है प्रवचन। हाँ, उदाहरण के लिए में तो देना पड़ता है। ठीक है, चलिए। अनवय व्यतिरेकौ दर्शयति। अब यहां कहता है उस भोक्तृ तत्व अर्थात पारमार्थिक जो स्वरूप है, किसका, आत्मा का, उसका अन्वय तीनों अवस्थाओं के साथ कैसे होता है, और इन तीनों अवस्थाओं का अन्वय नहीं होता है इसको दिखा रहे, दृष्टांत के द्वारा बताएंगे। अन्वय व्यतिरेक दर्शयति अर्थात अन्वय और व्यतिरेक को दिखाने जा रहे हैं, किसके द्वारा, ग्यारहवें श्लोक के द्वारा। उच्चारण कर लीजिए, यत्र यदृशते दृष्टा, यत्र यदृश्यते दृष्टा, जाग्रत स्वप्ना सुसुप्तिषु, जाग्रत स्वप्ना सुसुप्तिषु, तत्रैव तन्नेतरेत्रेत, तत्रैव तन्नेतरेत्र इत्यनुभूतिर्हि सम्मता, इत्यनुभूतिर्हि सम्मता। कहते हैं यत्र यदृश्यते, यदृश्यते यत्र मतलब जागृत आदियों में क्या है, यदृश्यते जो देखा जाता है, कौन देखता है, दृष्टा, दृष्टा को हम अनुभव करते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु अर्थात जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में और सुषुप्ति अवस्था में, तत्रैव उसी जागृत स्वप्न सुषुप्ति में। ज्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं ना, क्योंकि आपका क्रम से आपको समझ में आया होगा, इसलिए ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। जागृत स्वप्न सुषुप्तियों में जो दृष्टा देखा जा रहा है, किसमें, जागृत अवस्था में, वही जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था के बारे में बताते उत्तरार्ध में, तत्रैव तन न इतर इति अर्थात ये जो जागृत स्वप्न और सुषुप्ति उन अवस्थाओं में जिसको देखा हमने उसको छोड़ करके इतरत्र मतलब जागृत स्वप्न में नहीं है, स्वप्न सुषुप्ति में नहीं है, इसी प्रकार सुषुप्ति स्वप्न में नहीं है, सुस्वप्न जागृत में नहीं, अथवा जागृत का शरीर स्वप्न में नहीं है, स्वप्न का शरीर सुषुप्ति में नहीं है, अर्थात तीनों अवस्थाओं में जो पदार्थ है अथवा अपना शरीर है ये सभी क्या है, इन अवस्थाओं में क्या है न इतरत्र, अर्थात इतर अवस्थाओं में ये नहीं है, जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में नहीं है, स्वप्न अवस्था निद्रा अवस्था में नहीं है, अथवा जागृत का शरीर स्वप्न में नहीं है, स्वप्न का शरीर निद्रा में नहीं है, किंतु मैं क्या है इन तीनों में अन्वित हूं कहते हैं। अनुभूति ही सम्मता, वह अनुभव होता है जो कौन भोक्तृतत्व अर्थात कुठस्थ तत्व आत्मत्व तत्व जी वो क्या है सभी अवस्थाओं में अन्वित है कि तो ये अवस्था है सब में अन्वित नहीं है। अनुभूति ही सम्मता अर्थात ये सम्मत है प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है ये दृष्टा क्या है इन सभी अवस्थाओं में है किंतु ये सभी अवस्था अथवा सभी अवस्थाओं में जो कोई पदार्थ है जड़ पदार्थ उनका सभी अवस्थाओं में अन्वय नहीं है। भाष्य देख लीजिए, टीका देख लीजिए, यत्र इति जागृदादिषु मध्ये यत्र यस्मिन् स्थाने जागृति स्वप्ने सुषुप्तो वा यत् स्थूलं सूक्ष्मं आनन्दश्च इति त्रिविधं भोग्यं दृष्टा साक्षिणा दृश्यते। कहते हैं जागृदादिषु मध्ये अर्थात जागृदादि अवस्थाओं में यत्र यस्मिन् स्थाने अर्थात जिस स्थान में जागृदादियों के जिन स्थानों में क्या है जागृति स्वप्ने सुषुप्त अर्थात जागृत अवस्था में स्वप्नावस्था में और सुषुप्त अवस्था में यत स्थूलम सूक्ष्मम आनंदश्च स्थूल सूक्ष्म और आनंद ये भोग ये तीनों के तीनों शैति त्रिविधम ये सब क्या है भोग्यम कौन कौन भोग्य है स्थूल भी भोग्य है सूक्ष्म भी भोग्य और आनंद भी भोग्य ये जो भोग्य ये त्रिविधम दृष्टा साक्षिणा दृश्यते दृष्टा जो साक्षी उसके द्वारा क्या है देखे जाते हैं ये तीनों के तीनों जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में जो पदार्थ है भोग्य है वो क्या है देखे जाते हैं किसके द्वारा दृष्टा के द्वारा ये सबका अनुभव बता रहे अनुभूयते तद्दृश्यम यह अनुभव होता है कि क्या है स्थूल सूक्ष्म और आनंद ये सब क्या है अनुभव होता है अर्थात ये अनुभव होता है का मतलब क्या देखे जाते हैं और जिसको देखा जाता है वो क्या होते हैं दृश्य वही कह रहे दृश्यम ये सब दृश्य है तत्रैव तस्यामेव अवस्थायाम तिष्ठति अर्थात उसी अवस्था में अनुभव करने वाला वहां तो रहता है किंतु वो जो दृश्य पदार्थ है वो दृश्य पदार्थ जैसे जागृत में रहने वाला पदार्थ जागृत में ही रहेगा स्वप्नावस्था में नहीं रहेगा स्वप्नावस्था का पदार्थ स्वप्नावस्था में ही रहेगा सुषुप्ति में नहीं रहेगा कैसे जैसे जागृत में हमने क्या है भोजन कर लिया पेट भर कर तो भोजन करने के बाद क्या है हमें नींद आ गई भोजन हो गया एक आध घंटे के बाद हमें उस भोजन का नशा चढ़ गया अभी आलस्य आ गया हम सो गए तो सोते समय में फिर क्या है हम स्वप्न में चले गए और अचानक ही हमें स्वप्न हुआ कि मैं जंगल में भटक रहा हूं प्यास लगी है भूख लगी है तो अब यदि जागृत का भोजन जागृत का शरीर यदि स्वप्न में होता तो भूख लगनी चाहिए थी क्या नहीं लगनी चाहिए थी प्यास लगनी चाहिए थी क्या नहीं लगनी चाहिए यदि होता तो किंतु होता नहीं है, अर्थात जागृत का वस्तु स्वप्न में नहीं है। स्वप्न में क्या है? दूसरा ही कुछ है। और स्वप्न में मान लीजिए हमने बढ़िया पंच पकवान खा लिए, बढ़िया भोजन किया, कोई भिखारी है और स्वप्न आया, अरे मैंने बढ़िया, मुझे किसी ने जो है किसी सेठ ने मुझे बढ़िया खिलाया, स्वप्न में खा लिया, पेट भर लिया, भर गया, उसका आनंद हुआ उसको, और उसके बाद अचानक क्या है, उसका स्वप्न टूट गया। और जहां भीख मांगने के लिए बैठा है वहीं पर वो देख रहा है अपने आप को, अरे अभी मैं भूखा हूं, मैं तो स्वप्न ही देख रहा था। अर्थात स्वप्न में जो भोजन किया, स्वप्न का भोजन जागृत में नहीं है, जागृत का भोजन स्वप्न में नहीं है, और ये दोनों के दोनों सुषुप्ति में नहीं, न शरीर है न शरीर में जो अन्न डाला था वो भी नहीं है। तो ही कह रहे हैं कि दृष्टा तु सर्वत्र, हाँ तस्याम अवस्थायाम तिष्ठति, जागृत के वस्तु जागृत में ही रहेंगे, स्वप्न की वस्तु स्वप्न में ही रहेंगी, जागृत में नहीं रहेगी, जागृत की वस्तु स्वप्न में नहीं रहेगी। इतरत्र न, अर्थात दूसरी जगह नहीं रहती है, जागृत को छोड़कर के जागृत से भिन्न कौन है इतरत्र? स्वप्न, जागृत स्वप्न में नहीं रहेगा। हाँ पर स्वप्न में जो हम जिस शरीर का अनुभव कर रहे हैं, वो स्वप्नस्थ शरीर अब वो अलग है हमारा, क्या है स्वप्नस्थ जो शरीर है वो अलग है। तो स्वप्न अवस्था में जागृत के पदार्थ नहीं रहेंगे, यदि स्वप्न अवस्था में जागृत के पदार्थ रहेंगे तो हमें भूख लग गई है ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। सरल है समझने के लिए, यदि जागृत अवस्था वाला जो शरीर, पेट भरा हुआ शरीर स्वप्न अवस्था में यदि होता तो हमें भूख लग गई है ऐसा भान होना ही नहीं चाहिए था, कि तो हो रहा है। इसका मतलब जागृत अवस्था वाला शरीर स्वप्न अवस्था में नहीं है, वहां स्वप्न अवस्था में दूसरा ही कोई शरीर है। ऐसी प्रकार स्वप्न अवस्था वाला शरीर जागृत में नहीं है, पेट भर गया स्वप्न में, बढ़िया खा लिया, ऐसा उसको हुआ, आनंद हो गया, आनंद के मारे अचानक उसकी क्या हो गई, नींद टूट गई, और देख रहा है तो मैं तो भूखा का भूखा ही हूं। मतलब स्वप्न अवस्था वाला शरीर में जो भोजन किया था वो शरीर जागृत में नहीं है, इसलिए क्या है जागृत में आते ही क्या अनुभव कर रहा है, मैं तो भूखा ही हूं, मुझे भोजन करना चाहिए। अथवा स्वप्न में क्या है, जागृत अवस्था में भोजन तो किया, पेट भरा है, किंतु स्वप्न में जाकर के देख रहा है मुझे तो भूख लग गई, मुझे भोजन करना चाहिए, ऐसा सोच रहा है वहां पर। मतलब वहां स्वप्न में वो काल्पनिक उसका शरीर होता है, जैसे जागृत में ये स्थूल शरीर है, वहां पर भी स्वप्न में क्या है उसका एक दूसरा शरीर होता है, मतलब निर्माण करता है वो, क्या करता है वो, निर्माण करता है। तो इसलिए कहते हैं स्वप्न में जो शरीर है वो शरीर जागृत में नहीं है, स्वप्न के भोग जागृत में नहीं है, इसी तरह जागृत के भोग स्वप्न में नहीं है, जागृत का शरीर स्वप्न में नहीं है, ये क्या है अपना अनुभव है। इत्यत्र न, अर्थात इन अवस्थाओं में नहीं है, इति अवस्थायाम नास्ति, इन अवस्थाओं में नहीं है, मतलब कहां है, बस जो जिस क्या है अवस्था में है वो वस्तु उसी अवस्था में, अर्थात जागृत अवस्था वाले पदार्थ जागृत में ही रहेंगे, स्वप्नावस्था वाले पदार्थ स्वप्न में ही रहेंगे, इनका अन्य अन्य अवस्थाओं में अतिक्रमण नहीं है, उन अवस्थाओं में जाते नहीं है। दृष्टा तो किंतु दृष्टा जाता है सभी में, दृष्टा तो सर्वत्र अनुगत तया वर्तत, किंतु दृष्टा जो है सर्वत्र अनुगत, दृष्टा क्या है सबके साथ अनुगत है, वर्तति इति अनुभव सर्वसम्मत, ये सबका अनुभव है, ये प्रसिद्ध है, सर्वसम्मत का अर्थ क्या है प्रसिद्ध में, ये प्रसिद्ध है। जागृत अवस्था को जिसने देखा वही व्यक्ति स्वप्नावस्था को देखा है कि नहीं? यदि जागृत अवस्था वाला स्वप्नावस्था को देखने वाले से यदि भिन्न होता तो उसको क्या नहीं कहना चाहिए? मैंने स्वप्न देखा, ये नहीं कहना चाहिए। जागृत अवस्था जिसने देखी, उसने जागृत अवस्था में देखा कि मेरा पेट भरा हुआ है, वही फिर स्वप्न में गया और फिर उसको लगा कि मैंने भूखा हूं, प्यासा हूं, अब जैसे प्राण छूट जाएंगे ऐसे घबरा के मारे झट से नींद टूट गई। अभी नींद टूटने के बाद क्या कह रहा है? अरे मैं तो पेट भरा हुआ था मेरा, तो स्वप्न में जाकर के क्या है, मैं तो अपने आप को भूखा मान रहा हूं, क्या है तृषा का अनुभव कर रहा हूं। मतलब जागृत अवस्था में जिसने अनुभव किया था मेरा पेट भरा हुआ है, वही व्यक्ति क्या है स्वप्न में कह रहा है कि मैं भूखा हूं, ऐसा अनुभव कर रहा है। और ये कब कह रहा है? स्वप्न टूटने के बाद कह रहा है। जागृत में तो मैं अभी अनुभव किया था मेरा पेट भरा हुआ था, किंतु स्वप्न में तो मैं भूखा हूं ऐसा अनुभव कर रहा हूं। यदि ये दोनों अलग होते तो कहना नहीं चाहिए था। स्वप्न जो देख रहा है, स्वप्न को देखने वाला कौन है? जो जागृत को देखने वाला है। जागृत को देखने वाला कौन है? जो स्वप्न देख रहा है, वही है। दोनों को देखने वाला एक ही है। यदि अलग होते तो उसको ये नहीं कहना चाहिए था कि अरे मैं तो स्वप्न में भूखा हूं ऐसा देख रहा था, मुझे स्वप्न हुआ था, जो मैंने जागृत में देखा है उसी चीज को मैंने स्वप्न में देखा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था यदि दोनों अलग होते तो। क्योंकि स्वप्न का यदि दृष्टा अलग होता वो तो स्वप्न में कहना चाहिए था, जागृत में आकर के उसको नहीं कहना चाहिए था। किंतु क्या कर रहा है वो? जागृत में आकर के कह रहा है मुझे स्वप्न में ऐसा ऐसा दिखा। मतलब क्या हो गया कि स्वप्न का दृष्टा और जागृत का दृष्टा दोनों एक ही है, अर्थात स्वप्न को जो देख रहा है वही जागृत को देख रहा है, और जो दोनों को देख रहा है वही क्या है सुषुप्ति को भी क्या है देख रहा है। तो सुषुप्ति का दृष्टा कैसे? मैं बड़ा सुख से सोया था, निद्रा का भी अनुभव किया, और जो मुझे बड़ा आनंद आ रहा था, मैं सो गया था, ये क्या है? स्मृति। क्या है? स्मृति। वो अनुभव नहीं है। जो हम बता रहे हैं मुझे अच्छी नींद लगी थी, ये थी का मतलब क्या? स्मृति, भूतकालीन। स्मृति किसको कहते हैं? स्मृति कैसी उत्पन्न होती है? अनुभव के बाद स्मृति होती है। या स्मृति सासा अनुभव पूर्विका, अर्थात जो जो स्मृति होती है वो कैसी होती है? अनुभव पूर्वक ही होती है। तो पहले हमने अनुभव किया, अनुभव करने के बाद क्या कह दिया? बड़ी अच्छी नींद लग गई थी। ठीक है, मतलब पहले अनुभव किया है, और आप क्या कर रहे हैं? हम उसकी याद बता रहे, उसका स्मरण कह रहे हैं, अर्थात हम क्या है निद्रा में भी थे, अर्थात सबके साथ मेरा अन्वय हो रहा है, मेरी उपस्थिति सभी अवस्थाओं में है, किंतु सभी अवस्थाओं की उपस्थिति सभी अवस्थाओं में नहीं है, अथवा उन अवस्थाओं में जो भी जड़ पदार्थ है उन जड़ पदार्थों का एक दूसरी अवस्थाओं में क्या है अन्वय नहीं है, अर्थात क्या है अभाव है, अर्थात एक का अन्वय है और एक का व्यतिरेक है। जड़ पदार्थों का एक दूसरे में व्यतिरेक है और आत्मा का अन्वय है, ये सबका क्या अनुभव है। तीनों अवस्थाओं को हम ये कहते हैं कि मैं ही देख रहा हूं, जागृत को मैंने देखा, स्वप्न को भी मैंने देखा और निद्रा को भी मैंने ही देखा, अर्थात अनुभव किया, मैंने उसका प्रकाशन किया। यदि प्रकाशन नहीं करता, अनुभव नहीं करता, नहीं देखता तो नहीं बोलना चाहिए। क्या है? जैसे ये माइक जड़ है, ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति के बारे में ये नहीं कह सकता है कि मैंने स्वप्न देखा, मैंने क्या है जागृत अवस्था देखी, मैंने निद्रा अवस्था देखी, ये नहीं कह सकता। क्यों? ये जड़ है, और जड़ कैसा होता है, संग वाला होता है। और जो संग वाला होता है वो किसी के बारे में बताता नहीं, और जो चेतन होता है, जो साक्षी होता है, जो प्रकाशक होता है वो बता सकता है, जो ज्ञान रूप होता है, जिसका स्वरूप क्या है, ज्ञान है, जिसका स्वरूप प्रकाशक है वो प्रकाशक बता सकता है, चैतन्य बता सकता है। तो वो चैतन्य कैसा है, तीनों अवस्थाओं में अनुगत है, वो तीनों अवस्थाओं में क्या उसका क्या अन्वय है, अन्वय होने के कारण क्या है बता रहे, तीनों अवस्था में है किंतु तीनों अवस्था में क्या है, ये तीनों अवस्था नहीं है। कितने बजे तक चल हो न, हरि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पर्वतीपतये हर हर महादेव।